ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 70% कमी आई है और आतंकी घटनाओं में भी भारी कमी हुई है। राज्यसभा में आज गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की 3 बड़ी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया है। गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी सरकार ने संविधान निर्माताओं के एक संविधान का एक झंडे का सपना पूरा किया है। गृहमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक भारत में नक्सलवाद समाप्त हो गया। अमित शाह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी हथियारबंद संगठनों से औपचारिक बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में आज वर्ष 2025-26 के लिए कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने अब तक 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की है। कृषि मंत्री ने कहा कि डिजिटल एग्री मिशन के अंतर्गत देश के हर किसान को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान से व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। लोकसभा ने केंद्रीय बजट में वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगे पारित कर दी हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रसायन और उर्वरक, बिजली, वाणिज्य और उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुदान मांगे बिना किसी चर्चा के पारित कर दी हैं। सदन ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों के सिलसिले में कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव नामंजूर कर दिए। इसके बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए गए विनियोग विधेयक 3/2025 को भी लोकसभा ने पारित कर दिया। भारत ने पिछले महीने की 5 तारीख को अमेरिका से अमृतसर वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों के साथ उड़ान में किए गए व्यवहार को लेकर वहां के अधिकारियों के समक्ष गंभीर आपत्ति प्रकट की है। भारत ने प्रत्यर्पित व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को भी बेड़ियों से बांधने का मुद्दा उठाया है। ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लोकसभा में दी। भारत ने चीन के होटन प्रांत में नए काउंटी बनाने पर कूटनीतिक माध्यमों से गंभीर विरोध दर्ज कराया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के लद्दाख में आते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने इस अपने क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। सूडान की सेना ने खरतूम स्थित राष्ट्रपति भवन पर दोबारा कब्जा कर लिया है। सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति भवन पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया था। सूडान के सूचना मंत्री खालिद अल अशर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब राष्ट्रपति भवन पर सेना का नियंत्रण है। दूसरी ओर विद्रोही सेना का कहना है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में लगभग 10,000 जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हैं जो करीब 165 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। स्क्वाश में भारत के अनाहत सिंह ने महिला वर्ग में और के वी चोट्रानी ने पुरुष वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।